हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वैसे मानना पड़ेगा तुम दोनों को, किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने दी अपने बारे में। चट मंगनी, पट ब्याह और झट से बच्चा पैदा करके सब काम एक बारी में खत्म करके अब एकदम रिलैक्स हो गए हो। श्रेया अपनी ही धुन में बिना आगे पीछे का कुछ सोचे बोलती ही चली गई, पर उसके कहे शब्दों ने वहां खड़े तीनों लोगों के चेहरे के भाव बदल दिए। अभी उनके बीच इतनी ही बातें हुई थीं कि श्रेया की माँ ने दोनों को बैठने को कहा। अर्श को लेकर आयुष्मान प्रीति के साथ एक तरफ आकर खड़ा हो गया। रौनक और श्रेया को सोफे पर बिठाया गया और उनकी हल्दी की रस्म शुरू हो गई। आयुष्मान अर्श को लेकर खड़ा था और प्रीति सामने बैठे दोनों लोगों को हल्दी लगते देख रही थी। एक बार फिर उसके चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी, जिसका कारण समझ पाना सबके बस की बात नहीं थी। आयुष्मान कुछ पल खामोशी से उसे देखता रहा, फिर उसकी मूड को बदलने के लिए उसने श्रेया को देखते हुए प्रीति से सवाल किया, दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं ना? प्रीति के कानों में उसके कहे शब्द पड़े, तब कहीं जाकर वो अपने ख्यालों से बाहर आई और रौनक श्रेया को देखते हुए मुस्कुराकर बोली, हाँ दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ पल बाद प्रीति के कानों में आयुष्मान के कहे ये शब्द पड़े, प्रीति अब तो तुम श्रेया को लेकर मुझ पर शक नहीं करोगी? उसने तुरंत ही चौंकते हुए निगाहें उसकी ओर घुमा ली। आयुष्मान चेहरे पर गंभीर भाव लिए उसे ही देख रहा था, शायद अपने सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा था। मैं उसे क्या किसी को लेकर भी आप पर अब कभी शक नहीं कर सकती? एक बार बहुत भारी कीमत चुकाई थी मैंने आप पर विश्वास न करने की गलती करके, अब भूल कर भी ऐसी भूल नहीं कर सकती। प्रीति के चेहरे से दर्द की लहर छू कर गुजर गई। जैसे ही वो अपनी बात कहकर चुप हुई, आयुष्मान ने भौं उचकाते हुए उससे सवाल किया, अच्छा अब जरा बताओ, इतनी भी कौन सी बड़ी सजा दी थी मैंने तुम्हें? बस मामा जी के घर रहने ही तो कहा था। आयुष्मान का ये सवाल सुनकर प्रीति की आंखों के सामने वो दिन किसी चलचित्र के भांति गुजर गए जो उसने आयुष्मान के बिना दिल्ली में काटे थे। वो दर्द, पीड़ा, तड़प, बेबसी जो उन दिनों में उसने सही थी महसूस किया था, सब जहन में एक बार फिर ताज़ा हो गया। कितनी मुश्किल से काटे थे उसने वो दिन रात, जिसका दर्द आज फिर उसकी आंखों में नमी बनकर उतर आया था। प्रीति ने नम आंखों से उसे देखा और भारी गले से बोली, आपके लिए ये छोटी सी बात होगी, पर मैं ही जानती हूँ कि मैंने वो चंद दिन कैसे बिताए थे आपके बिना। मैं दोबारा कभी एक पल के लिए भी आपसे दूर नहीं हो सकती। आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे, तड़प जाती हूँ मैं आपके लिए। मुझसे दोबारा वो सब सहा नहीं जाएगा, इसीलिए मैं दोबारा भूल कर भी आप पर और आपके प्यार पर शक करने की गलती नहीं कर सकती। प्रीति की आंखों में आई नमी देखकर और चेहरे पर झलकते दर्द को अपने सीने में महसूस करते हुए आयुष्मान का मन व्याकुल हो उठा। उसने उसकी भीगी निगाहों पर निगाहें टिकाते हुए गंभीरता से सवाल किया, इतना तड़पी थी मेरे लिए तो एक बार भी मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया था? कैसे करती फ़ोन आपको, जब आप जाते जाते मेरे सामने सवालों का पहाड़ खड़ा कर गए थे और कह गए थे कि आप मुझसे उस दिन मिलेंगे या बात करेंगे जब मैं आपको आपके सवालों के जवाब दे दूंगी? उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रही थी मैं, ताकि जल्दी से जल्दी आपको जवाब देकर वापस आपके पास आ सकूं। प्रीति ने अपनी बेबसी आयुष्मान के सामने जाहिर कर दी। आयुष्मान पलटकर कुछ कह ना सका, शायद उसके शब्द कम पड़ गए थे। स्थिति ऐसी थी कि दोनों की आंखें नम थीं, लबों पर खामोशी छाई थी, दिल बेचैन था, मन व्याकुल था। अनजाने से दर्द का एहसास दोनों के मन में टीस बनकर चुभन पैदा कर रहा था और उनकी निगाहें एक दूसरे पर टिकी थीं। भाभी, रौनक की आवाज दोनों के कानों में पड़ी, तब जाकर उनकी पलकें हल्के से झपकी और निगाहें एक दूसरे पर से हटी। प्रीति ने खुद को संभालते हुए लबों पर फीकी मुस्कान सजाकर रौनक की ओर निगाहें घुमाई। रौनक जो उसे ही देख रहा था, उसने हाथ से प्रीति को अपने पास आने का इशारा कर दिया। भाभी यहाँ आइए ना, देखिए सब हल्दी लगा रहे हैं और आप वहाँ खड़ी हैं, आपके इकलौते देवर की हल्दी है, आकर भाभी का फर्ज निभाइए। रौनक की बात सुनकर प्रीति की उलझन भरी नजरें आयुष्मान की ओर घूम गईं। मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, तुम्हारा देवर बुला रहा है तुम्हें, जाओ जाकर भाभी का फर्ज निभाओ। आयुष्मान ने मुस्कुराकर प्रीति को आंखों से ही जाने का इशारा किया तो प्रीति सर हिलाते हुए उनके तरफ बढ़ गई। गरिमा जी बाकी औरतों के साथ पहले ही दूल्हे दुल्हन को हल्दी लगा चुकी थी, बस प्रीति ही रह गई थी। प्रीति ने बारी बारी दोनों को हल्दी लगाई, फिर सर घुमाकर आयुष्मान की ओर देखा, जिसका पूरा ध्यान अर्श से बात करने में था। उसे देखते ही प्रीति के शैतानी दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया और उसके लबों पर शैतानी मुस्कान फैल गई। आंखें शरारत से यूं चमक उठी मानो आकाश के सभी चांद सितारों की चमक इस वक्त उसकी आंखों में समा गई हो। प्रीति ने थोड़ी सी हल्दी अपनी उंगलियों में लगाई और लबों पर मुस्कान सजाए आयुष्मान की ओर कदम बढ़ा दिए। आयुष्मान अर्श से बातें करने में मग्न था और नन्हा अर्श भी खूब आवाजें निकाल रहा था, जैसे उसकी सब बातें समझकर उसे जवाब दे रहा हो, बीच बीच में खिलखिला भी देता, जिससे उसके जबड़े नजर आने लगते। उन बाप बेटे की जुगलबंदी में अचानक ही विघ्न पड़ गया जब आयुष्मान के कानों में प्रीति की मीठी सी आवाज पड़ी, आयुष्मान जी। आयुष्मान ने आवाज सुनकर अर्श पर से निगाहें हटाई तो उसकी नजर उसके सामने खड़ी प्रीति पर पड़ी, जो अब भी आंखों में चमक और लगों पर शैतानी मुस्कान सजाए उसे ही देख रही थी। आयुष्मान उसके बदले हुए रंग ढंग देखकर इतना तो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। इससे पहले कि वो प्रीति के शैतानी दिमाग की थाह पा पाता, प्रीति की शहद सी मीठी आवाज ने एक बार फिर उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। आयुष्मान जी, प्रीति ने अपनी हथेली और उंगलियों का इस्तेमाल करके उसे इशारे से झुकने को कहा। आयुष्मान की भौहें इकट्ठी हो गईं। जरूरत से ज्यादा मिठास और प्यार दोनों ही हानिकारक होता है, और आयुष्मान को अंदाजा हो चला था कि इस मीठी आवाज के पीछे कुछ तो शैतानी छुपी है। उसने झुकने के बजाय भौं उचकाते हुए प्रीति से सवाल किया, क्यों, मुझे नीचे झुकाकर क्या करना है तुम्हें? आयुष्मान का सवाल प्रीति को जरा भी रास नहीं आया। उसने झल्लाते हुए कहा, आपको नीचे झुकाकर आपका सर कलम करके अपने आशिक को भेंट स्वरूप देना है। अब जान ली वजह, तो जल्दी से नीचे झुकिए। आयुष्मान की आंखें फटी की फटी रह गईं उसका जवाब सुनकर। वो आंखें फाड़े हैरान परेशान सा उसे देखने लगा। जब प्रीति ने देखा कि आयुष्मान बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखे ही जा रहा है, नीचे नहीं झुक रहा, तो उसकी त्योरियां चढ़ गईं। उसने आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरा और खींचते हुए धमकी भरे लहजे में बोली, आप नीचे झुकते हैं कि मैं अपने लिए किसी और को ढूंढ लूं जो बात बात पर मुझ पर शक ना करे और मेरी बात भी माने। सोच लीजिए, बहुत से लड़के हैं यहाँ, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो किसी और को जाकर चूम लूंगी, फिर ऐसे ही आंखें फाड़े देखते रहिएगा आप मुझे।